पृष्ठ संख्या 122, आज्ञेय और देश के विभाजन की त्रासदी। मैंने 2004 में एक निबंध लिखा था, उपन्यास और लोकतंत्र। वह उसी समय पहल पत्रिका में छपा था। वह निबंध 2005 में प्रकाशित मेरी पुस्तक आलोचना की सामाजिकता में भी मौजूद है। उस निबंध में मैंने लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा, 1947 में भारत का विभाजन हुआ और सांप्रदायिक उन्माद के कारण अभूतपूर्व दंगे हुए। बड़े पैमाने पर जनता अपनी जमीन से उजड़कर दूसरी जगह जाने और बसने के लिए मजबूर हुई। यह भारतीय समाज के इतिहास की अपूर्व त्रासदी थी। उस समय छायावाद के तीन महत्वपूर्ण कवि जीवित थे, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। उसी समय अन्य कवियों के साथ साथ प्रगतिशील आंदोलन के पांच कवि कविताएं लिख रहे थे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि देश के विभाजन और उससे जुड़ी हुई संपूर्ण त्रासदी पर निराला, पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन में से किसी ने कोई महत्वपूर्ण कविता नहीं लिखी है? उस समय ही नहीं, बाद में भी नहीं। उस समय के कवियों में केवल अज्ञेय ने 12 अक्टूबर 1947 से 12 नवंबर 1947 के बीच शरणार्थी शीर्षक से 11 कविताएं लिखी थीं और साथ ही अनेक कहानियां भी, जो 1948 में शरणार्थी नाम से प्रकाशित पुस्तक में मौजूद हैं। विभाजन की त्रासदी की जटिल समग्रता की अभिव्यक्ति उपन्यासों और कहानियों में ही हुई है, क्योंकि कथा साहित्य ही अपने समय के इतिहास से सार्थक मुठभेड़ में सक्षम रहा है और मनुष्य विरोधी प्रवृत्तियों के निर्मम आलोचना के लिए तत्पर भी। इन्वर्टेड कॉमा बंद। 2011 में जब अज्ञेय की जन्मशती आई, तब कुछ लोगों ने विभाजन की त्रासदी पर लिखी अज्ञेय की कविताओं को अपनी खोज की तरह पेश किया। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी ने ना तो 2004 में छपे उस लेख का उल्लेख किया, न 2005 में प्रकाशित मेरी पुस्तक का, जिसमें अज्ञेय की उन कविताओं की चर्चा है। 2011 में ही अशोक वाजपेयी ने अज्ञेय की जन्मशती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें मैंने अज्ञेय की विभाजन से संबंधित कविताओं और कहानियों पर भाषण दिया। मेरे भाषण पर कुछ ऐसे लोगों ने आपत्ति की जो स्वयं को पृष्ठ संख्या 123 सदा सर्वदा सही समझते हैं और दूसरों को गलत। उनकी आपत्ति यह थी कि मैं उस संगोष्ठी में शामिल ही क्यों हुआ। उनकी आपत्ति के उत्तर में मैं यही कह सकता हूँ कि अज्ञेय हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि, कथाकार, निबंधकार और साहित्यिक चिंतक हैं। यह सच्चाई किसी के मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं है, वह निर्भर है अज्ञेय के लेखन पर। दुनिया का या हिंदी का ऐसा कोई कवि और लेखक नहीं है जिसके लेखन से अभी लोग सदा सहमत हों। आइए अब अज्ञेय की विभाजन की त्रासदी पर लिखी कविताओं और कहानियों पर कुछ विस्तार से बात करें। अज्ञेय ने विभाजन की त्रासदी पर 11 कविताएं लिखी हैं। 12 अक्टूबर 1947 से 12 नवंबर 1947 के बीच ये कविताएं अनेक शहरों में लिखी गईं। पहली कविता इलाहाबाद स्टेशन पर 12 अक्टूबर को, दूसरी कविता मेरठ में 15 अक्टूबर को, तीसरी कविता इलाहाबाद में 23 अक्टूबर को, चौथी कविता इलाहाबाद में ही 24 अक्टूबर को, पांचवी कविता इलाहाबाद में 24 अक्टूबर को, छठी कविता इलाहाबाद में 29 अक्टूबर को, सातवीं कविता काशी में 4 नवंबर को, आठवीं कविता काशी में 5 नवंबर को, नवीं कविता काशी से इलाहाबाद की रेल यात्रा में 6 नवंबर को, दसवीं कविता इलाहाबाद में 7 नवंबर को और ग्यारहवीं कविता मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर आधी रात के समय 12 नवंबर को। इन कविताओं को लिखी जाने की जगहों, तारीखों और समयों का ध्यान दीजिए तो यह मालूम होगा कि उन दिनों देश में जो कुछ हो रहा था, उससे अज्ञेय कितने परेशान, बेचैन और परिचित थे तथा साथ ही यह भी मालूम होगा कि वे उस समय लगातार यात्राएं कर रहे थे स्थितियों की जानकारी के लिए। शरणार्थी शीर्षक से लिखी अज्ञेय की 11 कविताओं में उनकी गहरी मानवीय संवेदनशीलता, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास की विसंगतियों की समझ, शरणार्थी होने और बनने की पीड़ा की अनुभूति, इंसानियत की तड़प की पहचान, मनुष्यता के अपमान का बोध, दंगों में लुटी स्त्री की असमत और अस्मिता के प्रति अथाह करुणा, धर्म के पाखंड के आतंक के नंगे नाच की शिनाख्त, दलितों की सर्वग्रासी यातना की चिंता और स्वराज्य के खाली और खोखले अर्थ की विडंबना की अभिव्यक्ति है। देश के विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों में बर्बरता का जो नंगा नाच हो रहा था, उसका उत्तर अज्ञेय ने कई अन्य कवियों की तरह न मौन से दिया है और न विलाप से। उनके मन में विक्षोभ, आक्रोश और वेदना का ज्वार उमड़ रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने कविताओं में की और कहानियों में भी। पहली शरणार्थी कविता घृणा के तांडों की भयावहता की समझ और पहचान की कविता है। वह घृणा उस समय हिंसा और प्रतिहिंसा के बीच खूंखार युद्ध के रूप, पृष्ठ संख्या 124 में प्रकट हो रही थी। अज्ञेय की यह कविता कहती है कि विभाजन की त्रासदी का संचालन और नियमन करने वाली भावना घृणा थी, जिसने इंसानियत और हैवानियत का फर्क मिटा दिया था। अज्ञेय ने लिखा है, कोटरों से गिल गिली घृणा झांकती है, मान लेते यह किसी शीत रक्त जड़ दृष्टि जल तलवासी तेंदुए के विष नेत्र हैं और तम जात सब जंतुओं से मानव का वैर है, क्योंकि वह सुत है प्रकाश का। यदि इनमें ना होता यह स्थिर तप्त स्पंदन, तो मानव से मानव की मिलती है आंख पर, कोटरों से गिलगिली घृणा झांक देती है। दूसरी कविता में सांकेतिकता के माध्यम से दूरगामी अर्थ की अभिव्यक्ति है। इस कविता में यह संकेत है कि स्वाधीनता आंदोलन के आखिरी दौर की राजनीति में सांप्रदायिकता के जो बीज बोए गए थे, उनकी फसल है विभाजन के समय के घृणा के आतंक व सर्वग्रासी फैलाव। इस कविता में स्वाधीनता आंदोलन की उस राजनीति की निर्मम आलोचना है और उसके दूरगामी परिणामों की गहरी चिंता भी। कविता छोटी है और इतनी सुगठित कि उसके किसी एक अंश को उद्धृत करने के बदले पूरी कविता को पढ़ना अधिक आवश्यक है। वैर की प्रणालियों से हंस हंस के हमने सींची जो राजनीति की रेती, उसमें आज बह रही खून की नदियां हैं, कल ही जिसमें खाक मिट्टी कह के हमने थूका था। घृणा की आज उसमें पक गई खेती, फसल काटने को अगली सदियां हैं। तीसरी कविता में विभाजन के समय फैली हिंसा और बर्बरता के सर्वव्यापी विस्तार और दारुण प्रभाव का मूर्त तथा गतिमान चित्रण है। शहरों में कहर पड़ा है और ठाव नहीं गांव में, अंतर में खतरे हैं, शंख बजे दुराशा के, पंख लगे पांव में त्राहि त्राहि, शरण शरण रुकते नहीं युगल चरण, थमती नहीं भीतर कहीं गूंज रही एक सुर रटना, पृष्ठ संख्या 125। कैसे बचें कैसे बचें कैसे बचें कैसे बचें आन मान, वह तो उफान है गुरूर का, पहली जरूरत है जान से चिपटना। चौथी कविता में अज्ञेय की काव्य कला की अधिकांश विशेषताएं मौजूद हैं। इसमें बिंबधर्मिता है और प्रतीकात्मकता भी, साथ ही आज़ादी की विडंबनापूर्ण परिणति का व्यंग्य भी, किंतु कहीं भी तो नहीं दिखती शिथिलता, तनी नसें कसी मुट्ठी भिचे दाद, ऐठी मांसपेशियां, वासना स्थगित होंगी किंतु झाग झर रहा मुंह से, आज जाने किस हिंस्र डर ने देश को बेखबरी में डस लिया, संस्कृति की चेतना मुरझा गई, मिर्गी का दौरा पड़ा इच्छा शक्ति बुझ गई, मुक्ति लब्ध राष्ट्र की जो देह होती लोथ है, ओंठ खिंचे भिजे दांतों में से पूय झाग लगे झरने, सारा राष्ट्र मिर्गी ने ग्रस लिया। पांचवीं कविता में दंगों और हत्याकांडों की भयावह स्थितियों को मूर्त रूप में अभिव्यक्त किया गया है। ध्रुव सब ढहने को बुद्धि जब जड़ हो तो मांसपेशियों की तड़पन को जीवन की धड़कन मान ले। ब्रैकेट जब घोर जाड़े में कंबल का संबल ना होता पास, तब हम जबड़े की किट किट ही से बांधते हैं आस कुछ गरमाई की। जैकेट बंद भागो भागो चाहे जिस ओर भागो, अपनी नहीं है कोई गति ही सहारा, यहाँ रुकेंगे तो मरेंगे। पृष्ठ संख्या 126। आप चाहें तो इसे आत्यंतिक कविता कह सकते हैं। आत्यंतिक कविता वह होती है जो बुद्धि और कल्पना को इतने तनाव में डालती है कि सहज सोच का अंत संभव लगता है। छठी कविता विभाजन की त्रासदी पर एक महाकाव्यात्मक कविता है। महाकाव्यात्मक कविता वह होती है जिसमें अपने समय और समाज के मनुष्य की प्रकृति, नियति और कभी कभी दुर्गति की भी व्यंजना होती है। यह कविता वैसी ही है, सांप अज्ञेय का एक प्रिय प्रतीक है जो इसमें रूपक के रूप में मौजूद है। उसके माध्यम से वह मानव जीवन और मानवीय संवेदना की विसंगतियों की अभिव्यक्ति करते हैं। विभाजन के समय बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान लोगों की पलायन का जो प्रलय प्रवाह हुआ, उस प्रक्रिया की पीड़ा और परिणति की अभिव्यक्ति इस कविता में है। साथ ही अपनी जन्मभूमि और जड़ों से उखड़ने उजड़ने का दर्द, विवशी, आशा निराशा आदि के बीच तड़पती इंसानियत की व्यंजना है। सातवीं कविता उस मनुष्यता की चीख की कविता है जो धर्मों और संप्रदायों की जड़ताओं और संकीर्णताओं से स्वतंत्र होती है। आठवीं कविता में भी सांप्रदायिकता से उपजी घृणा के जहर की तीव्रता और व्यर्थता की व्यंजना है। शरणार्थी शीर्षक से श्रृंखला की नौवीं कविता विशेष ध्यान देने लायक है। इसका पहला आकर्षण इसका शीर्षक है श्रीमद् धर्म धुरंधर पंडा। इस कविता में दूसरा आकर्षक तत्व है व्यंग्य, जो पैदा हुआ है धर्म के पाखंडपूर्ण आचरण के बोध से, उस समय के भीषण दंगों से। सबसे अधिक अपमानित, लांछित और बेइज्जत हुई स्त्रियां, अज्ञेय ने कविता के आरंभ में लिखा है। उठा वहां चित्कार असंख्यों दीनों पद दलितों का, अपमानिता घर्षिता नारी का सहस्त्र मुख फटा हुआ सुर। फटे हृदय की आह गूंज गई, थर्राया सहम गया आकाश, फटी आंखों की भट्टी में जो खून उतर आया था वह जल गया। उस चित्कार को सुनकर धर्म धुरंधर पंडे ने जो कहा, उसमें निहित व्यंग को ध्यान में रखकर जो कुछ कहा गया है, अब उसे देखिए। सदा द्रौपदी की लज्जा को पृष्ठ संख्या 127। ढका कृष्ण ने चीर बढ़ाकर, धर्म हमारा है करुणा कर, हम न करेंगे बहिष्कार, म्लेच्छ घर्षिता का भी चाहे उस लांछन की छाप अमिट है, साथ न बैठे हाथ हमारे वह पाएगी सदा दया का टुक्कड़। इस कविता के अंत में व्यंग्य की धारा अधिक तीक्ष्ण है। इतना ही बस था समर्थ श्री पंडा जागे, यह भी उनकी अनुकंपा थी और नहीं क्या, अपने आसन से डिग जाते, लुट जाती मर्जात सनातन, इसीलिए यूं रुकी। सो गए श्रीमद धर्म धुरंधर पंडा, मानवता को लगी घोटने फिर गुंजल के मरी रूढ़ की। दसवीं कविता दलित दर्द की कविता है और वह भी व्यंग्य तथा विडम्बना से भरपूर। इस सुगठित कविता को पूरे रूप में पढ़िए। कहती है पत्रिका चलेगा कैसे उनका देश, मेहतर तो सब रहे हमारे हुए हमारे फिर शरणागत, देखें अब कैसे उनका मैला ढुलता है। मेहतर तो सब रहे हमारे हुए हमारे फिर शरणागत, अगर वहीं के वह हो जाते पंगु देश के सही, मगर होते आजाद नागरिक होते द्रोही, यह क्या कम है यहाँ लौटकर जन्म जन्म तक जुगों जुगों तक। पृष्ठ संख्या 128। मिले उन्हें अधिकार एक स्वाधीन राष्ट्र का मैला ढोमे। ग्यारहवीं कविता में एक और 1947 में मिले विडम्बनापूर्ण स्वराज्य की आलोचना है तो दूसरी ओर शरणार्थी होने और शरणार्थी बनकर जीने की मजबूरी की चिंता है, जो निरंतर उपेक्षा और अपमान की जिंदगी जीने की मजबूरी होती है। अब इस पूरी कविता को पढ़िए। हमने भी सोचा था कि अच्छी चीज है स्वराज, हमने भी सोचा था कि हमारा सिर ऊंचा होगा ये क्या में जानते हैं, पर आज अपने ही बल के, अपने ही छल के, अपने ही कौशल के, अपनी समस्त सभ्यता के सारे संचित प्रपंच के सहारे जीना है हमें तो, बन सीने का सांप उस अपने समाज के जो हमारा एकमात्र अक्षंतव्य शत्रु है, क्योंकि हम आज हो के मोहताज उनके भिखारी शरणार्थी हैं। आइए शरणार्थी शीर्षक कविताओं के बाद देश के विभाजन की त्रासदी से संबंधित अज्ञेय की कहानियों पर एक नज़र डालें। मेरे सामने उनकी पांच कहानियां हैं। लेटर वर्क्स, शरणदाता, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, रमनते तत्र देवता और बदला। अज्ञेय की कविताओं में सांकेतिकता है, अर्थ की बहुलता है और व्यंजकता भी है, पर कहानियों में स्थितियों, व्यक्तियों और घटनाओं का ब्यौरा है, विस्तार है, चित्रण है और वर्णन भी। लेटर बक्स नाम की कहानी में बर्बर सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक बच्चे के भोलेपन का चित्रण है, जो दंगों की भयावहता के एहसास को कई गुना बढ़ाता है। इस कहानी में अज्ञेय की दार्शनिक वृत्ति भी मौजूद है। इनवर्टेड कॉमा, छोटी जगहों में कोई त्वरा का बोध ही नहीं होता, बड़ी जगह में भी यह धुन होती है कि सब कुछ जल्दी हो, तेजी के साथ हो, क्योंकि हर किसी को काम है और हर काम जरूरी है और हर जरूरत तत्कालिक। इन्वर्टेड कॉमा बंद। बच्चों में अपार उत्सुकता होती है और चकित होने की चेतना भी, जिसकी पहचान इस कहानी में है। इन्वर्टेड कॉमा बच्चों के लिए लेटर वर्क्स ताजमहल और पिरामिडों से पृष्ठ संख्या 129 कम पात्रता नहीं रखता संसार के साथ अचरजों में स्थान पाने की, यह मुझे अपने बचपन से याद था। इन्वर्टेड कॉमा बंद। दूसरी कहानी शरणदाता है। यह कहानी अनेक कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें भाषा और संवेदना का आत्मीय संबंध बहुत गहरा है। इस कहानी के एक पात्र रफीकुद्दीन की बातों में जो चिंता, पीड़ा, थकान, उदासी और पराजय का बोध है, वह इंसानियत की हार की गवाही देता है। इस कहानी में दंगों के कारणों की ओर भी संकेत हैं। इन्वर्टेड कॉमा विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़प फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों के अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस कहानी से यह भी जाहिर होता है कि जब आदमी इंसानों से डरने लगता है, तब वह जानवरों और पक्षियों से प्रेम करने लगता है। देश के बंटवारे ने आदमी से आदमी को ही नहीं, आदमियत को भी अलग कर दिया था। ऐसी स्थिति में आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र आदि खोखले शब्द लगने लगे। इस कहानी के अंत में अज्ञेय ने कहानी की कहानी भी लिखी है, जिसे आप उन्हीं की जवानी सुनिए। इन्वर्टेड कॉमा घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति है, इसलिए मानव को दिख जाती है और वह पूर्णता का आनंद पा लेता है। घटना की संगति मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या दैव या भगवान की बनाई हुई संगति है, इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इन्वर्टेड कॉमा बंद। मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, वर्ग भेद और उससे उत्पन्न उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार की कहानी है। प्रत्येक धर्म और समुदाय में दो वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, या कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग के लोग अपने ही धर्म और समुदाय के गरीब पुरुषों और स्त्रियों की कैसी तौहीन करते हैं, यही इस कहानी का तथ्य है। वैसे तो यह कहानी मुस्लिम समुदाय के बारे में है, परंतु ऐसी स्थितियाँ किसी भी धर्म और समुदाय में हो सकती हैं और होती भी हैं। कहानी का आरंभ दिलचस्प है। और पाठकों के सोच विचार को जगाने वाला भी है। इन्वर्टेड कामा छूत की बीमारियां यों कई हैं, पर डर जैसी कोई नहीं। इसलिए और भी अधिक कि यह स्वयं कोई ऐसी बीमारी है भी नहीं। डर किसने नहीं जाना, और मारती है तो स्वयं नहीं दूसरी बीमारियों के जरिए। कह लीजिए कि वह बला नहीं बलाओं की माँ है। नहीं तो यह कैसे होता है कि जहाँ डर आता है वहाँ तुरंत घृणा और द्वेष और कमीनापन आ घुसते हैं, और उनके पीछे पीछे न जाने मानवात्मा की कौन कौन सी दबी हुई व्याधियाँ। इन्वर्टेड कॉमा बंद। जैसे मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई मुस्लिम समुदाय की विसंगति की कहानी है, वैसे ही रमन्ते तत्र देवता हिंदू समुदाय की विसंगति की कहानी है। कहानी घटित होती पृष्ठ संख्या 130 है, अक्टूबर 1946 के कलकत्ता में। इस कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि हिंदुस्तान के अधिकांश मुसलमान हिंदू समाज के उपेक्षित और प्रताड़ित दलित हैं। कहानी का एक पात्र कहता है, इन्वर्टेड कॉमा, आप सोचिए तो मुसलमान है कौन? मजलूम हिंदू ही तो मुसलमान है। हमने जिससे हिकारत की वह हमसे नफरत करें तो क्या बुरा करता है? हमारा कर्ज ही तो अदा करता है ना। इन्वर्टेड कॉमा बंद। यह कहानी हिंदू समाज में स्त्री के साथ भेदभाव की सच्चाई बयान करती है। एक सरदार के कथन में कहानी के शीर्षक की व्याख्या है और उस पर व्यंग्य भी। इन्वर्टेड कॉमा, आप हिंदू हैं ना, इसलिए यही सोचते हैं वह मर जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। हिंदू धर्म उदार है ना, मारता नहीं, मरने का सब जगह से सुभीता कर देता है। इसमें दो फायदे हैं, एक तो कभी चूक नहीं होती, दूसरे यह तरीका दया का भी है। लेकिन यह बताइए, अगर आदमी पशु है तो औरत क्यों देवता हो? देवता मैं जानबूझकर कहता हूँ, क्योंकि इंसान का इंसाफ तो देवता से भी ऊंचा उठ सकता है। इन्वर्टर का मैं बंद। बदला कहानी हैवानियत पर इंसानियत की विजय की कहानी है। इस कहानी के एक सरदार पात्र के कथन से यह बात साबित होती है। सरदार कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, औरत की बेइज्जती है वह हिंदू या मुसलमान की नहीं, वह इंसान की माँ की बेइज्जती है। शेखुपुर में हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं जानता हूँ कि उसका मैं बदला कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका बदला हो ही नहीं सकता। मैं बदला दे सकता हूँ, और वह यही कि मेरे साथ जो हुआ वह और किसी के साथ ना हो। इन्वर्टेड कॉमा बंद।